ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत बाबा के प्यारे मधुबन से मुझे बहुत स्नेह से आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। जैसे ही मुझे बताया गया कि आपको अनुभव शेयर करना है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे मुझे बाबा ने विशेष और पूरे परिवार को मधुबन का माउंट आबू का पहला परिवार होने का सौभाग्य दिया। तो सोचते सोचते मैं भी वैसे ही 7 साल की बच्ची के रूप में बन गई कि 1970 के अंदर जब हमने बाबा का परिचय दिल्ली में प्राप्त किया, शॉर्ट में आपको कुछ वो अनुभव शेयर करते हुए बाबा के कैसे विशेष हमें वरदान प्राप्त हुए वो शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो मधुबन में आप आते हैं तो बहुत सीनियर्स के आपको क्लासेस मिलते ही हैं, लेकिन ये एक अनुभव जो हमेशा ही हमारे जीवन में यादगार के रूप में बना हुआ है। तो हम दिल्ली में थे और उस समय मैं 1970 की बात कर रही हूँ, लेकिन उस समय मुझे भी पूरा कोई होश नहीं था। शायद मैं भी 4 साल की होंगी वहाँ, और मेरे लौकिक में बड़े ब्रदर राकेश भाई वो स्कूल में जाते थे करोल बाग में। उस समय अपना जो सेंटर था वो एक छोटा सा सेंटर था, अभी जो सेंटर है वो तो बड़ा वाला सेंटर है, लेकिन ये अजमलखा पार्क के पास में सेंटर था। और भैया रोज स्कूल में जाते हुए वहाँ से जब आते थे वापस तो वहाँ पर रुक जाते थे, क्योंकि जो सेंटर्स के बाहर जो प्रदर्शनी लगी रहती है और मॉडल्स होते थे तो उसको देखकर रुक जाते थे। और जब उन्होंने रोज रुकना शुरू किया तो वहाँ पर उन दिनों में पालू दादी हुआ करती थी, शील बहन, उसमें से पालू दादी तो अभी नहीं है लेकिन पुरानी बहनें उस समय देखती थी कि ये बच्चा तो रोज ही रुक जाता है। तो उन्होंने उनको कुछ बहुत सहज सहज आत्मा की, एक 8 साल का भैया की उस समय उम्र थी, तो बहुत सिंपल बातें ज्ञान की बतानी शुरू की और टोली खिलानी शुरू की। आपको पता है कि प्यार स्नेह ज्यादातर ब्राह्मणों का जन्म ही टोली से हुआ है और स्नेह प्यार से हुआ है। तो वो रोज जब घर पे लेट आता था तो उसको डांट पड़ती थी, क्योंकि हम लोग आर्य समाजी परिवार के थे माताजी की तरफ से, और रोज लेट जब आना शुरू हुआ तो इधर से तो उसने जाना भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर बताता था कि मैं जाता हूँ और जो बहनें सिखाती थी वो आकर घर पे बताया करता था। और बातें तो अच्छी करता था, 8 साल का बच्चा आत्मा परमात्मा के बारे में बताए, तो उस समय डर भी रहता था कि बच्चा कहाँ जाता है, कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। तो ऐसे रोज हो रहा था। और हम बहनें, क्योंकि मेरे से छोटी बहन जो है वो बॉम्बे में सेंटर इंचार्ज है, वहाँ पर शांता क्रूज के कनेक्शन में कालीना में, वो मेरे से छोटी बहन है, 2 साल छोटी। तो हम दोनों बहनों को भी चोरी चोरी लेके जाते थे सेंटर पर, और माता पिता को पता भी नहीं होता था, तो हम तीनों भाई बहनें सेंटर पे जाते थे। तो जब ऐसा रोज होना शुरू हुआ तो एक जो विशेष दिन आया शिव जयंती का, और उस समय जो मनोहर दादी जी को वहां पर बुलाया गया था स्पीच करने के लिए, भाषण देने के लिए। तो बहनों ने भैया को इनविटेशन कार्ड दिया और कहा कि आपके माता पिता को भी बुलाओ, उनको भी लेकर आओ। तो भैया ने, राकेश भैया ने जाकर घर पर वो कार्ड दिया, कहा आपको तो जरूर चलना है। तो उस समय मम्मी पापा बताते हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन इसीलिए कि ये बच्चा रोज लेट आता है, रोज डांट खाता है, फिर भी रोज सेंटर पे जाता है, हमें देखना है कि वो जाता कहाँ पर है। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम वहां पर जाएंगे। तो हम सभी वहां पर गए और मनोहर दादी जैसे जैसे स्पीच दे रही थी, भाषण दे रही थी, तो सुनते सुनते पिताजी जिनका लौकिक में नाम सत्यदेव भाई, और सुनते सुनते उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था जीवन में। उन्होंने उस समय भी बहुत संध्या करते थे और पहले आर्मी में रहे, और उस समय भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा जैसे कि ईश्वर के प्रति कैसे मैं भगवान को जीवन में प्राप्त करूं, यही एक लगन थी। तो बस उस समय जैसे जैसे मनोहर दादी की स्पीच सुनते गए, वैसे वैसे उनको लगने लगा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया। दूसरे दिन से ही उन्होंने कोर्स करना शुरू किया और माताजी ने, पिताजी ने, हम बच्चे तो ऐसे चले जाते थे क्योंकि हमने कभी 7 डेज कोर्स किया ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, और हम तो जो सुनते थे, बड़े जो स्नेह प्यार से हमें बताते थे वो ही हम सुनते थे। तो जब कोर्स पूरा हुआ और जैसे वो हमारे पूरे परिवार के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पिताजी के जो अनुभव होने शुरू हुए, और जैसे जैसे मधुबन का 70s में, आपको पता है कि उन दिनों में ये नियम होता था कि जब तक कोई 6 महीने तक रेगुलर सेंटर पर नहीं जाते हैं उनको मधुबन के अंदर अलाउ नहीं करते थे। तो उन दिनों में वहां पर अपने गुलजार दादी जी के, जो माताजी आपने सुना होगा, लौकिक माताजी जिनको ऑलराउंडर दादी कहते हैं, वो ऑलराउंडर दादी हमारी टीचर थी उस समय। तो उन्होंने, जब पिताजी ने कहा कि मुझे तो वहां जाना है जहां पर भगवान आए हैं, तो दादी ने कहा कि ऐसे आपको कुछ महीने तक जाना होगा, क्योंकि जैसे ही कोर्स किया धक से नियमों में चलना शुरू कर दिया। और दादी जी ने उस समय, ऑलराउंडर दादी ने पत्र लिखकर मधुबन से विशेष परमिशन ली कि इस प्रकार से ये परिवार निकला है और बहुत लगन में है, और विशेष रूप से मधुबन के लिए, मधुबन आना चाहते हैं। तो हम तो स्कूल में जाते थे, हम तो नहीं उस समय आ पाए स्कूल के वजह से, लेकिन उस समय माउंट आबू में आने की विशेष परमिशन मिली और माता पिताजी आए। और यहाँ आने के बाद में एक ऐसा विशेष अनुभव पिताजी को हुआ कि मुझे तो यहाँ पर ही आना है, यहीं पर आकर रहना है। ये बात उन्होंने जैसे यहीं पर ही निश्चय कर लिया, और उसके बाद में जब दादियों से सबसे यहाँ विशेष अनुभव लेकर, क्योंकि हमें कुछ महीने का ही फर्क पड़ा था, जब हम ब्रह्मा बाबा को तो हम नहीं देख पाए, कुछ महीने का ही फर्क पड़ा, लेकिन जब यहाँ पर आए उस समय जो हमें पालना मिली वो ऐसी ही पालना मिली जैसे कि खुद अव्यक्त बाप दादा की तो पालना हमें मिली ही बहुत विशेष रूप से, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसे खुद पालना दे रहे ऐसा ही हमें अनुभव होता रहा। तो बस ऐसी ही एक कहानी है जैसे कि मैं आपको सुनाती जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, जैसे एक पिक्चर शूट हो जाती है और उसको आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उस फिल्म में होते हैं और वो उसी फिल्म में बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि हम छोटे से बच्चे कैसे बड़े होते चले गए। यहाँ बाबा के घर में जब हम आए तो मुझे ध्यान आ रहा है कि उस समय मैं याद कर रही हूँ कि विशेष जो परमिशन मिली और पिताजी वापस आने के बाद में दिल्ली में विदिन 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने निर्णय लिया, और कैसे लिया, उससे पहले छुट्टी लिया व्यक्त बाप दादा से और आप सभी ने जो ये बाबा का कमरा देखा है, ये बाबा का कमरा इससे भी बहुत छोटा था उस समय। मुझे अभी भी याद है, ये बाद में बड़ा बनाया गया। तो उस बाबा के कमरे में पिताजी ने बाबा से परमिशन ली कि ऐसे मैं आना चाहता हूँ। और उन्होंने एक विवेकानंद की बहुत सुंदर लाइन कही थी। बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे आप आना चाहते हैं और कोई माया आएगी, कोई परीक्षा आएगी तो आप घबराएंगे तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं। और उन्होंने विवेकानंद जी की भी लाइन बोली, यू कैन क्रम्बल द माउंटेन इफ यू हैव विल पावर, डेथ इज ड्यू टू वीकनेस। यानी कि आप में अगर दृढ़ शक्ति है तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर कमजोरी के कोई बात ऐसी आ जाती है कमजोरी की, तो तब आप जीवन के अंदर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो उस समय पिताजी बताते हैं कि दादी प्रकाशमणि जी थे उस समय बाबा के कमरे में। बाबा ने विशेष छुट्टी दी और 2 महीने के अंदर ही हम परिवार यहाँ पर आ गए। कोई जैसे अभी सब आए हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो प्लानिंग के साथ आए और प्लानिंग के साथ रह रहे। लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो उस समय पिताजी ने कुछ सोचा नहीं। उन्हें लगा कि उनमें एक इस प्रकार का नशा हमने देखा उनके जीवन में कि नहीं, मुझे भगवान मिल गया है और मुझे तो उस जगह पर जाना है जहाँ भगवान है। मैं समझती हूँ, मैं तो 6 साल की शायद थी, 6 साल, हाँ 6 या 7 साल की जब मैं यहाँ पर आई। और मुझे आज वो दिन अभी भी याद आता है कि शायद जून एंड था जब हम आए उस समय। 70 में माता पिताजी आ गए, 71 में हमें लेकर आ गए। यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर जब हमें भूरी दादी ने रिसीव किया था रेलवे स्टेशन से, और जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ सबसे पहले निर्वैर भाई जी खड़े थे और उन्होंने हमारा वेलकम किया। और उस समय तो हम किसी को जानते भी नहीं थे, हम छोटे बच्चे थे, और हमारे पूरे परिवार का वेलकम किया। और उसके बाद में हमारी पूरी व्यवस्था यज्ञ से हुई, क्योंकि रहने की भी व्यवस्था, कहाँ रहना है दादी जी ने बताया। भूरी दादी जी हमें खुद लेकर गए, हम नक्की लेक के पास में ही एक स्थान पर जो था, छोटा सा हाउस था, वो लिया हमारे लिए। और हमको पूरा ही बाबा के घर से ही भोजन वहाँ मिलता था। और फिर धीरे धीरे जैसे कि हम देख रहे थे कि पूरी ही पालना जैसे कि हमारी यज्ञ से हो रही थी। बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारी क्लासेस में आपसे शेयर कर सकती हूँ कैसे हमारे सुंदर अनुभव रहे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि हम जब यहाँ पर आए तो हमारे पूरे परिवार को पूरा, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं था। अब तो कहते हैं कि ये शांतिवन निवासी हैं या ये पीस पार्क के, उस समय तो कुछ होता ही नहीं था। तो हमें पूरा ही मधुबन निवासियों की तरह ही हमें हर चीज की हमारा ध्यान रखा जाता था। मुझे अभी भी याद है कि हमें कितने वर्षों तक यज्ञ के ही कपड़े मिले, छोटे बच्चों के। संतरी दादी जी हमें बुलाया करती थी, मुन्नी बहन और संतरी दादी जी, कि आपके लिए ये छोटे बच्चों के कैसे जो ड्रेसेस होती थी, कहते थे ये आपके लिए है। तो हमें वही यज्ञ के ड्रेसेस मिलते थे, कपड़े मिलते थे, वही हम यज्ञ के कपड़े पहनते रहे। और जो हमें दादियों से बड़ों से पालना मिली, मुझे अभी भी याद आता है कि हिस्ट्री हॉल होता था ना, तो ये सामने का जो जितनी भी बिल्डिंग, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, ट्रेनिंग सेक्शन भी उस समय बन रहा था, इंद्रप्रस्थ भी नहीं था। तो हम यहाँ आंगन भी जो था कच्चा आंगन होता था, तो हम बच्चे खेलते रहते थे वहाँ पर। और हमें और कुछ पता नहीं था कैसे क्या योग करना है, क्या ज्ञान है। लेकिन हमें दीदी मनमोहिनी की उस समय, क्योंकि दीदी का ये समय चल रहा है, सब उनके प्रति जो भी उनके महावाक्य, उनके जीवन की बहुत सारी बातें सुनाई जा रही हैं, तो हमें वास्तव में उनसे बहुत पालना मिली दीदी से। क्योंकि दीदी हमें ये कहती थी, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम यूनिफॉर्म में ही आते थे, क्योंकि दीदी ने हमें पक्का किया था जिस हिस्ट्री हॉल में मैं अभी बैठी हूँ उसी हिस्ट्री हॉल में। हमें दीदी कहती थी कि पहले आपको यहाँ पर आना है क्लास के अंदर, फिर आपको स्कूल जाना है। तो उस समय हम बैग लेके आते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म हमने पहनी होती थी और दीदी हम पीछे बैठ जाते थे हिस्ट्री हॉल में, तो दीदी हमें कहती थी कि नहीं पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठो, क्योंकि हमें बीच में से जाना होता था स्कूल के लिए, इसलिए हम ज्यादा पीछे की तरफ बैठते थे। तो दीदी ने कहा कि नहीं आपको आगे बैठना है। एक आदत बन गई हमारी इस प्रकार की, जो कुछ ही भाई बहने होते थे उस समय। अब मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो मेरे जीवन के अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर, जैसे मैंने बताया कि लौकिक माता जी और पिताजी नहीं है अभी, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, और माता जी का नाम शीला था, और हम तीनों भाई बहने हैं, बहन तो अभी मुंबई में है और भाई मेरे साथ में ही है। तो एक ऐसा विशेष अनुभव कि हम मधुबन में आए, इमेजिन कीजिए 70 में हमें परिचय मिला, जो रहना शुरू किया, तो हम सबसे पहले जब आते ही, मैं समझती हूँ दूसरा तीसरा दिन ही होगा, हमें बाबा से मिलवाया गया। अव्यक्त बाप दादा से जब हम मिले तो जो कोने में गद्दी है वहां पर बाबा बैठे थे, और उन दिनों में मनमोहिनी दीदी को छोड़ के कोई भी ऊपर बैठता, कोई चेयर भी नहीं होती थी वहां पर, एक चेयर होती थी दीदी के लिए, दादी जी भी नीचे बैठते थे, सभी नीचे। मैं समझती हूँ मुश्किल से, जो मेरी याददाश्त में आ रहा है, मुश्किल से 15-20 लोग भी नहीं थे उसमें, बाबा के कमरे में। और हमें पहली मुलाकात में दादी जी ने अपने साथ में ही साइड में बिठाया, हम छोटे बच्चे थे वहां बैठे थे, सभी हम आगे बिठा दिया हमको। तो बाबा की मुरली जैसे ही पूरी हुई तो मुझे इतना याद है, क्योंकि हम इतने छोटे थे, 6-7 साल के, हमें मुरली तो समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे अभी भी याद आता है कि बाबा ने उस समय जैसे दादी ने हमारे परिवार का परिचय दिया बाबा को, तो बाबा ने हमें आगे बुलाया, और उस समय सोने के चम्मच से बाबा ने थाली में से निकालकर हमें मुख के अंदर खिलाया, तो सभी को सोने के चम्मच से खिलाया। मुझे आज भी नहीं भूलता है कि बाबा ने हमें आते ही ऐसा वेलकम किया, और इस प्रकार का हमें जो शक्ति भरी, वो जीवन के अंदर शायद इससे बड़ा अनुभव नहीं होगा, कि बाबा ने शायद अनगिनत बार, मैं तो समझती हूँ कि काउंट भी नहीं हम कर सकते कि हम कितनी बार बाबा से मिले। और उन दिनों में ये सिस्टम ही नहीं होता था, राजू भाई आपको बताते होंगे कि काफी बाद में पर्सनल जो मुलाकात होती थी, कैसे हरेक को व्यक्तिगत बाबा ब्लेसिंग्स जो देते थे, वो उन दिनों में लिखने का कोई सिस्टम नहीं होता था कि व्यक्तिगत बाबा ने क्या कहा, लेकिन बहुत बार इतने वरदान मिले, जो मैं 2-3 मेन वरदान आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि बाबा हमारे परिवार को देखकर ये कहते थे कि आप बहुत विशेष सौभाग्यशाली परिवार है। अब 72-73 में किसने सोचा था कि और सब परिवार भी आएंगे, तो बाबा ने कहा कि आपके परिवार को देख के और भी परिवार आएंगे, तो ये बहुत बड़ा झाड़ बन जाएगा यहाँ पर। तो हम सोचते थे कि ऐसे कैसे होगा, बाबा हमें देख के कह रहे कि और परिवार भी आएंगे मधुबन के अंदर। तो इस प्रकार से बाबा हमें ये कहते थे कि बच्चे आपके परिवार के द्वारा बहुत सेवाएं होंगी। उस समय हमें ये बात कैसे समझ में आई, क्योंकि शायद आपको बहुत कम भाई बहनों को ऐसा पता होगा जो शायद सुन रहे होंगे उनमें से भी, कि जिन दिनों में हम यहाँ पर आए उन दिनों में माउंट आबू का जो लोकल यहाँ पर आबू निवासी रहते हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिक, वो संस्था के इतने ज्यादा, जिसको कहें कि फेवर में नहीं थे, संस्था के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातें वो करते ही रहते थे। हमें दीदी ने और दादी ने विशेष रूप से बुलाकर ये बताया था कि आप माउंट आबू में रहेंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो आपको उनके बीच में रह के उनकी सेवा करनी है, वो कुछ न कुछ आपके बोलेंगे जरूर संस्था के लिए, लेकिन आपको उनकी सेवा करनी है। और ये बात हमारे मन में पक्की हो गई और हमको पता चल गया कि जैसे जैसे हम लोगों से मिलते थे और हम स्कूल में जब जाते थे तो स्कूल के अंदर हमें टीचर्स और बाकी लोग हमें कहते थे, अच्छा आप माउंट आबू में आए हैं, ब्रह्मा कुमारीज में, देखना आपको जादू लग जाएगा। ये सब बातें हमें टॉन्टिंग में सुनने को मिलती थी, लेकिन हम भी पक्के रहे, मैं, भैया और छोटी बहन, हम बिल्कुल पक्के रहे, क्योंकि हमें पता था कि हमें इनकी सेवा करनी है। बहुत सारी बातें सुनते भी हम उनके बीच में रहते हुए भी उनकी सेवा करते रहे। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि हमें बाबा ने और दादियों ने जैसे कहा कि आपने स्थानीय लोगों की सेवा करनी है और विशेष रूप से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, तो ऐसा ही होता था। हमको पूछते थे वहां जाते हैं, आपको ये सब तो नहीं होता, कोई जादू तो नहीं करता, काजल तो नहीं, हम कहते हैं नहीं, हम तो जाते हैं वहां, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ वहां, तो हमें इस प्रकार की शिक्षाएं मिलती है अच्छी। तो इस प्रकार से हम उनको बहुत प्यार से धीरे धीरे उनको जवाब भी देते रहते थे। तो उन्हीं दिनों में जब हम यहां पर आए तो हमारे जो लौकिक पिताजी, उनको बहुत सेवा का शौक था, और जब वो आए तो उन्होंने सब्जी कटवाने की जिम्मेवारी ली। हमने ये देखा कि आज भी पिताजी को बहुत भाई बहने अभी तक भी याद करते हैं। उन्होंने जब से ये जिम्मेवारी ली तब से जब तक वो कर सके, मैं समझती हूँ लगभग भी उन्होंने 30-35 साल तक सब्जी विभाग में वो मुरली भी सुनते थे और सब्जी भी काटते थे। बहुत उनका स्वभाव ऐसा था कि हंसी हंसी में, बहुत सारी सीनियर बहनें जो आज सेंटर इंचार्ज हैं वो कहती थी कि हमें पता भी नहीं चलता था कि हम सब्जी कैसे काट लेते हैं, तो लास्ट तक वो सब्जी काटते थे। और कई बार जानकी दादी वहां आते थे, प्रकाशमणि दादी आते थे, उनको पूछते थे कि आपने नाश्ता किया, तो बोलते थे मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक। तो कभी कभी उनको आने में 10 भी 11 भी बजते थे, 12 भी बज जाते थे, लेकिन वो सब्जी की सेवा पूरी करके ही आते थे घर पर। और हमने उनसे भी सीखा, क्योंकि सामने हमने एक बात देखी कि उनमें इतना दृढ़ निश्चय, एक बाबा दूसरा न कोई। बहुत सारी बातें भी आई, कई प्रकार की छोटे मोटे विघ्न भी आए, लेकिन उनको एक ही दृढ़ निश्चय कि एक बाबा दूसरा न कोई, ये बात उनके मन में इतनी पक्की थी और इतना विश्वास कि बाबा हमारे साथ है। और हमने देखा कि कैसे जीवन में, उनके जीवन से हमें जो मिला, और हम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो हमारे मन में भी यही निश्चय रहा कि नहीं, हम मधुबन में हैं, हमें बाबा ने यहाँ, क्योंकि उन दिनों में ये कहते ही नहीं थे, ये तो बाद में जैसे कि स्थान बनते रहे तो पूरी पालना ही मधुबन से मिलती रही, कोई चीज ऐसी नहीं हो जो हमें मधुबन से नहीं मिलती थी। और दादी हमें कहती थी कि आप मधुबन का ही परिवार हो, मधुबन का ही हिस्सा हो। और हमारे मन में बचपन से ये रहा कि बाबा हमें आपकी ही सेवाएं करनी है। मुझे आज भी याद है, क्योंकि उन दिनों में हम अव्यक्त बाप दादा से राय लेते थे कि हमें क्या करना है। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाई पूरी की, और उन दिनों में विदेश की सेवाएं अभी शुरू हुई थी, तो दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि ने विशेष कहा कि आपको विदेश की सेवाओं में जाना है, इसीलिए आपको आगे इंग्लिश की पढ़ाई पढ़नी है। तो उन दिनों में यहाँ कॉलेज ही नहीं था, और मुझे अपनी दादी के पास जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो कहीं भी आसपास नहीं। तो मैं वहां पर जब गई तो एक ही धुन, क्योंकि मेरी दादी जो थी वो ब्रह्मा कुमारी इसको पसंद ही नहीं करती थी, और मुझे ये लगा कि नहीं, मैं तो बाबा के लिए पढ़ रही हूँ, बाबा की सेवा करनी है। और उन दिनों में बाबा ने मुझे बहुत अनुभव कराया। एक ही अनुभव खास सुनाना चाहती हूँ कि बाबा मुझे एक दो दिन पहले ही एग्जामिनेशन में क्या आना है वो पेपर भी मुझे टच कराते थे, और मैंने देखा वही पेपर में वही क्वेश्चन आ रहे। ये बहुत सालों तक हुआ जब तक मैंने एमए इंग्लिश में नहीं कर लिया, मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही। मैं बाबा को कहती थी, बाबा ये मैंने नहीं किया है, ये तो आप ही मुझे करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से पढ़ाई पढ़ते हुए कैसे बाबा हर कदम में मदद करता है, ये प्रैक्टिकल हम देखते थे। कि बाबा कहता है कि बच्चे मुझे तुम याद करोगे ना, मैं तुम्हारा पेपर भी सॉल्व कर दूंगा। ये मैंने खुद देखा कि कैसे बाबा टच भी करा रहे हैं और लिखवा भी रहे हैं। क्योंकि दीदी मुझे हमको कहती थी, जब मैं पढ़ने गई मुझे याद आता है कि दीदी मनमोहनी ने हमें मुझे बुलाया, कहा ये चद्दर आप लेके जाना, ये अगरबत्ती स्टैंड लाना, लेकर जाओ और ये चद्दर पर बैठकर योग करना है आपको जब आप वहां पढ़ने जाओगे, रोज इसको यूज करना है। तो ये ऐसे ऐसे बातें जैसे दीदी हमें बताते थे, और वो सब सबका विशेष आत्माओं का, चाहे दादी प्रकाशमणि जी, चाहे निर्वैर भाई जी, दीदी मनमोहिनी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी और सभी वरिष्ठ जो भी भाई बहनों का बहुत ज्यादा हम लोगों को स्नेह मिलता रहा। क्योंकि हम खेलते रहते थे उन दिनों में, कुछ क्लासेस ज्यादा होती नहीं थी और घंटी बजती थी, उसके बाद में जैसे टाइम टेबल होता है सारे दिन का, उन दिनों में नहीं हुआ करता था। तो हमें अभी भी याद है कि जब हम यहाँ खेलते रहते थे तो दादी बाहर बैठती थी, तो कई बार हमें बुलाती थी और हम जो थे दादी की गोद में चले जाते थे। तो आनंद किशोर दादा ये कहते थे हमें देखकर कि ये बच्चे जो हैं जरूर यज्ञ की पुरानी आत्माएं हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में हम आ गए और मधुबन में आ गए, हमें तो लगता ही नहीं था कि ये कोई हमारा प्लान है, ये तो बाबा का प्लान है, बाबा ने ये प्लान जो है वो प्लान जो है रियलिटी में बदल रहा है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम पालना कर लेते हुए बाबा की, सबकी ब्लेसिंग्स लेते हुए, बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती गई और हम लिखते नहीं थे, लेकिन वो छप गई हमारे माइंड में कि बाबा को सदा साथ रखोगे विजय है। अभी भी मुझे याद आ रहा है कि ये हिस्ट्री हॉल के अंदर जब बाबा मिलते थे, तो उस समय मैंने पढ़ाई शुरू की थी और फिर बाहर जब पढ़ने के लिए गई तो बीच में बाबा से मिलने के लिए आई, तो यहाँ पर अव्यक्त बाप दादा पार्टीज के साथ में मिल रहे थे, तो मैं भी बाबा के सामने गई। और उस समय और कोई था ही नहीं, कोई बड़ी पार्टी भी नहीं थी, तो मैं बाबा को देख रही थी और बाबा ने मुझे ये कहा कि बच्ची तुम्हें पता है कि तुम सदा विजयी हो, एक बार कहा क्योंकि छोटे थे इतना समझे नहीं। फिर बाबा ने दोबारा रिपीट किया, बच्ची तुम समझती हो कि तुम सदा विजयी हो। बाद में मैं देखती जा रही हूँ कि बाबा के वरदान कैसे सिद्ध हो रहे, हमें कैसे बाबा की सेवाओं का चांस मिलता रहा। हमें देखकर बाबा ने कहा कि बच्चे देखना कि आप वो सेवाएं करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो इस प्रकार से कई बातें सामने आती गई, बाबा के वरदान सिद्ध होते रहे। एक बल इसमें तीन बातें हमने यहाँ मधुबन में बहुत सारी बातें सीखने को मिली, लेकिन मुख्य रूप से तीन बातें मैं अनुभव से सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि सबके सब पूरा परिवार आ गए, बहुत रिलेटिव्स का अपोजिशन रहा, खासकर ग्रैंड मदर का, उन दिनों में ये बहुत बड़ी बात होती थी कि पूरा परिवार का परिवार ज्ञान में आ गए और यहाँ आ गए। डिसीजन लिया, कुछ देखा नहीं क्या है, वहां बिजनेस था वो भी वाइंड अप कर दिया, पैसा बीच में है दे नहीं रहे, पिताजी ने वो भी नहीं देखा, कहा नहीं बाबा के घर में जाना है, मुझे तो ईश्वर मिल गया, भगवान मिल गया, एक ही नशा। तो एक बात जो बहुत छप गई वो ये कि बाबा का हाथ और साथ, जब हम बाबा को साथ रख लेते हैं, बाबा के बन जाते हैं, तो उस समय बाबा सब कुछ हमारे लिए करते हैं और बंधे रहते हैं सब कुछ करने के लिए। वो प्रैक्टिकल में हमने देखा कि बाबा हमारी कैसे पालना कर रहे थे, जो हम सोचते थे बाबा किसी न किसी के द्वारा करवा रहे थे। फिर दूसरी बात जो बाबा ने हमें यहाँ यज्ञ में दादियों से सीखी वो ये थी कि हमें दूसरों का रिगार्ड और रिस्पेक्ट रखना ही है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मुझे अभी भी याद आता है कि दादी जी और खासकर मनमोहिनी दीदी को ये पसंद नहीं था कि कोई जोर से बात करे। यहां पर दीदी खुद इतना धीरे से बोलती थी कि किसी को सुनाई भी नहीं देता था। इस प्रकार से सामने जब हम देखते थे कि कैसे रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जो भी सेवा कर रहा है, बाबा ने उनको जिम्मेवारी दी है तो हमें उनकी विशेषताओं को देखना है। ये एक प्रकार का सामने हमें देखने का मौका मिलता था। मैं एक बीच में मुझे एक बात याद आ रही है कि शुरुआत में जो भट्टी होती थी, योग भट्टी की मैं बात बता रही हूँ कि हम छोटे आए, पहली बार मनोहर दादी ने हमको बोला कि तुमको कल से भट्टी में बैठना है। अब हम छोटे बच्चे थे, हमें पता नहीं, हम डर गए बहुत, भट्टी क्या होती पता ही नहीं था ना, मतलब कि तो कहा, हम बहुत डर गए कि भट्टी के अंदर मनोहर दादी बोलती, और हंसते हंसते बोला। तो हमने कहा भी देखो तैयार हो के आ तो गए, पर हम बहुत डर रहे थे कि कौन सी भट्टी में बैठना, और भट्टी भी कहाँ हो रही थी, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ट्रेनिंग सेक्शन में एक, अभी तो वो शायद मुझे ध्यान नहीं क्या है, वहाँ एक ही बड़ा कमरा हुआ करता था जहाँ भट्टी, मधुबन वाले भाई बहने जानते कि शुरुआत में जो उन दिनों में होंगे 70-71 में, तो सभी लोग नीचे बैठते थे, दादी जी, दादी प्रकाशमन और सभी दादियां, मनोहर दादी। तो दादी बहुत हंसने लग गई, मैं दादी हमको बहुत डर लग रहा है भट्टी में, हम कैसे जाएंगे। कहा वो भट्टी नहीं मिट्टी, वो दूसरी भट्टी है, ये योग भट्टी में आपको बैठना है। तो कैसे बहुत प्यार से और बहुत लगातार बैठते थे हम लोग, तो हिल भी नहीं सकते थे, इतने अच्छे अनुभव कैसे बाबा हमें अनुभव कराते थे। और वो दिन इतने प्यारे थे कि कैसे हर चीज का डिसिप्लिन रहा करता था, और जो उनकी दृष्टि मिलती थी हमको बाबा की, और यहाँ पर व्यक्त बाप दादा की मुरली चलती थी तो हम इधर से उधर एक सेकंड के लिए नहीं देखते थे, ऐसा बाबा दृष्टि देते थे। जितने हॉल में बैठे हुए होते थे वो सब बाबा से दृष्टि लेते थे पावरफुल, और ऐसा अनुभव होता था कि जैसे एक एक को व्यक्तिगत वरदान जो है वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है। तो ये बीच बीच में मैं आपको पीछे भी ले जाती हूँ, सामने जो दृश्य आ रहे हैं वो आपको दिखाती चली जा रही हूँ। अब मैं वहां पर आती हूँ उस बात पर कि हम कैसे बाबा हमें, जब बाबा प्लानिंग करते हैं तो हमारी प्लानिंग नहीं होती है। हमें, मुझे तो बचपन से हमें लगता था कि हमारी प्लानिंग है ही नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें बुलाया, बाबा की छत्र छाया के अंदर हम पलते गए। विशेष रूप से आबू की जो स्थानीय सेवाएं, उसके लिए दादी जी ने हमें निमित्त बनाया। दादी, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था, हम घर घर जाके पर्चे देते थे, इनविटेशन देते थे, कोई मीटिंग होती थी, पहले तो उन दिनों में मीटिंग आज की तरह होती नहीं थी, लोकल लोगों की सेवाओं के लिए सबसे पहले हमें बुलाकर बताया जाता था कि इनको आपको निमंत्रण देना, हम उनको लेकर आते थे। और धीरे धीरे कैसे ये लोकल लोगों की सेवाएं शुरू हो गई, ये आगे और बढ़ी जब ग्लोबल हॉस्पिटल बना। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो उस समय, क्योंकि पूरी मैंने एमए इंग्लिश में की, स्कॉलरशिप लेते गए, बहन ने भी स्टडी पूरी की, भैया ने भी स्टडी पूरी की, तो हमने बाबा से पूछा, व्यक्त बाप दादा से, क्योंकि अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं किया, दादियों की राय से किया। तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा, हमने कहा बाबा अभी क्या करना है, अभी स्टडी पूरी की है। तो बाबा ने उस समय मुझे ये कहा कि बच्ची आप स्कूल में पढ़ाओ। उन दिनों में ये बहुत फेमस स्कूल है, आपने सुना होगा, सोफिया स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है और बहुत फेमस स्कूल है। वहां की प्रिंसिपल आई मिलने के लिए कि आपको यहाँ टीचिंग करनी, क्योंकि मैंने एमए इंग्लिश में किया था, उन दिनों में टीचर्स की जरूरत थी। तो बाबा से पूछा कि बाबा आप बताइए क्या करना है। तो बाबा ने क्या कहा, व्यक्त बाप दादा ने, कि बच्ची ये आप टीचिंग यहाँ के लोकल लोगों की सेवाओं के लिए आप कर रही है, आपको सुबह टीचिंग करनी है, शाम को इनकी सेवा करना, कभी बंधन नहीं समझना। बाबा ने खुद कहा नहीं, आपको करना है लोकल सेवा, लोकल लोगों की सेवाओं के लिए। मुझे आज भी याद आ रहा है कि बाबा ने त्रिकालदर्शी बनकर वो कहा, क्योंकि जितने भी साल मैंने पढ़ाया वहां पर, उससे लोकल लोग जितने भी पेरेंट्स थे, बच्चे थे, वो सब हमारे बहुत क्लोज आ गए। और खास मुझे एक विशेष सेवा का चांस मिला, वो ये थे कि वहां पर आर्मी एयरफोर्स और सीआरपीएफ की जो ऑफिसर्स की लेडीज थी वो पढ़ाती थी। वो बहुत क्वेश्चंस करती थी मुझे, आप लोगों का जीवन, आप क्यों इतनी छोटी आयु में आपने जीवन दे दिया है। तो उन दिनों में मुझे उनका भी सेवा का चांस मिला, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारी को बिल्कुल लाइक ज्यादा नहीं करते थे और यहाँ आने की परमिशन देते नहीं थे। तो मुझे आज भी याद है कि पहला प्रोग्राम हुआ था मधुबन में, मेडिटेशन हॉल में सभी आर्मी एयरफोर्स के सभी ऑफिसर्स को बुला के यहाँ पर गेट टुगेदर रखा था। ये एक बाबा ने चांस दिया कि उसके बाद मुझे ये तीनों ही आर्मी एयरफोर्स और सीआरपीएफ की सेवाओं के निमित्त बना दिया। और उन्हीं दिनों में हॉस्पिटल बना और मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं था। और मुझे आगे से बढ़ के दादी प्रकाशमणि ने कहा, क्योंकि लोगों ने थोड़ा इसका विरोध कर रहे थे, लोकल लोग माउंट आबू के, और वो ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, ये तो ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके उनके अंदर। और उन्होंने सबने मिलकर, काफी लोगों ने, लोग, ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है, जयंती बहन को जब पता चली तो उन्होंने सभी विदेशी लोगों को ये कहानी सुनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय जब लोकल लोगों ने मिलकर लेटर लिखकर कलेक्टर के थ्रू, उस समय भैरव सिंह शेखावत थे चीफ मिनिस्टर, उनको फाइल भेजी कि यहां पर हॉस्पिटल नहीं चाहिए हमको, ये हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, कुछ कुछ लिख के भेजा। निर्वैर भाई और दादी जी ने हमको बुलाया, मैं उस समय स्कूल में पढ़ाने की वजह से काफी कॉन्टेक्ट्स थे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, अभी आपको घर घर जाकर उन लोगों के ओपिनियन लेने, क्योंकि यही लोग ही तो हॉस्पिटल्स के लिए रिक्वेस्ट करते थे। तो मैंने और भैया ने मिलकर हम लोग लोगों के पास में गए, सभी जानते थे, उन्होंने खुद ओपिनियन लिख के दिए, बहुत अच्छे लेटर्स लिख के दिए कि नहीं, यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है। और उन लोगों से भी हमने लेटर्स लिखवा लिए जिन्होंने लिख दिया था कि हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उन लोगों ने भी लेटर्स लिखे। वो पूरी फाइल तैयार हुई, कलेक्टर के पास गई और कलेक्टर ने उस फाइल को उस समय चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत को भेजा। और उसी समय उसको देखते ही कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर ने कहा, किसने कहा कि हॉस्पिटल नहीं चाहिए, ये देखिए ये तो सब चाहते हैं। और हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन उस समय रुक गया था, फिर से ऑर्डर दे दिया। और मुझे पता नहीं था कि ये मेरा एक सेवा का पार्ट बन गया हॉस्पिटल में जुड़ने के लिए। और उस समय 89 से मैं जुड़ गई, ये भी बाबा का प्लान था, क्योंकि मेरे को तो दादी जी विदेश में भेज रही थी, मैं तो पूरा तैयार थी सेवा में जाने के लिए। लेकिन ये चेंज हुआ क्योंकि दादी जी ने, निर्वैर भाई ने, डॉक्टर अशोक मेहता ने, डॉक्टर प्रताप ने कहा कि हमें यहां की बहन चाहिए, क्योंकि जो उनकी सेवा कर सके, क्योंकि लोग तो थोड़ा सा इसका विरोध भी कर रहे हैं, आप रहेंगे, आपको देखकर वो आएंगे, बात करेंगे, उनको आप भरोसा दे सकते हैं। तो बस इस प्रकार ग्लोबल हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशंस की सेवाएं दी। और सारा परिवार तो लोकल सेवाएं करता रहा, बहन जो है वो बंबई में सेवा करने के लिए गई, वो वहां पर सेंटर संभालने लगी। यहां बाबा ने मुझे सेवा भी मैं भी बाबा की समर्पित हूँ, मधुबन निवासी हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि बचपन से ही हमें वो वैसा ही बड़ों ने पालना दी। बस कुछ सेकंड और सुनाते हुए पूरा करना चाहूंगी कि कैसे बाबा अपना कार्य कराता है। जैसे मैंने कहा, एक बल भरोसा बाबा के ऊपर जब हम रखते हैं, करण करावन हार बाबा करवाता है, और बाबा जो कराता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है, उसमें कभी अकल्याण नहीं होता है। तो मैं जब हॉस्पिटल में आई तो उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बाबा ने पीएचडी करवा दी। ये पहली डॉक्टरेट थी जिसको प्रेसिडेंट ने भी एक्नॉलेज किया, प्रतिभा पाटिल ने भी इसको एक्नॉलेज किया, उसके लिए मुझे अवार्ड्स कई मिलते रहे। मैं कहती हूँ मुझे नहीं मिले, ये तो बाबा का कार्य था, मेरा कार्य है ही नहीं। और स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज के अंदर ब्रह्मा कुमारी का पहला डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उससे पहले इस प्रकार से नहीं हुआ। बाबा की अव्यक्त मूल्यां जिसको मैंने पूरा स्टडी किया, और मेरे गाइड ने कहा आप कैसे लिख सकते हैं अव्यक्त मूल्यां और साकार मूल्यों को रेफरेंस, ये कोई बाइबल नहीं है, कोई गीता में आप लिखिए, गीता बाइबल लिखिए, आप कैसे लिख सकते हैं। मैंने कहा नहीं, जो सत्य है वो मैं वही लिखूंगी। और आज जब मैंने उसको रेफरेंस में लिख दिया, मेरे गाइड ने भी मना कर दिया पीएचडी में आप नहीं लिख सकते, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मैंने लिखा, बाबा ने करवाया, क्योंकि बाबा ने मैसेज दिया था कि बच्ची अभी तक किसी ने भी यज्ञ में इसमें पीएचडी नहीं की है, आपको बाबा की सेवा के लिए जरूर करनी है। और बाबा ने दो शक्तियां दी, एक तो एकाग्रता की और दूसरी दृढ़ निश्चय की। तो जैसे बाबा ने वरदान दिया और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बाबा ही लिखवाते रहते थे, सारा काम जो था सारा लिखने का काम मैं मेडिटेशन रूम में करती थी, यहाँ मधुबन में आके मैं लिखती रहती थी बाबा के कमरे में। मैं बताना चाहूंगी आप भाई बहनों को कि बाबा मुझे वहां टच कराते थे, कौन सी बुक आपको लेनी है। तो ऐसे करते करते ये सब बाबा ने मुझे बहुत बहुत चांस दिए। बाबा, मैं बाबा का थैंक्स करती हूँ, दादियों का, सभी मधुबन निवासियों का, कि हमें ये बहुत बड़ा बहुत श्रेष्ठ सौभाग्य मिला। ओम
ये वही नहीं, अच्छा ये सेट तो आपको ये बीच में आ गया था।